प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में तीसरी इकाई भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, जिसमें पहला अध्याय पढ़ रहे थे जातिवाद एवं सांप्रदायिकता। हमने जातिवाद के बारे में अध्ययन कर लिया है, सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। आज हम सांप्रदायिकता के बारे में चर्चा करेंगे। सांप्रदायिकता का अर्थ, परिभाषा, सांप्रदायिक समस्या के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुने और याद करें। सांप्रदायिकता अर्थ एवं परिभाषा। जब एक धार्मिक सांस्कृतिक एवं भाषाई समूह या समुदाय समझबूझकर अपने को अलग वर्ग मानकर धार्मिक सांस्कृतिक भेदों के आधार पर राजनीतिक मांगे रखता है, जब एक धार्मिक सांस्कृतिक एवं भाषाई समूह या समुदाय समझबूझकर अपने को अलग वर्ग मानकर धार्मिक सांस्कृतिक भेदों के आधार पर राजनीतिक मांगे रखता है, अपनी मांगों को राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों से अधिक प्राथमिकता देता है, उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। तो सांप्रदायिकता का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, यानी एक ही संप्रदाय को बढ़ावा देना, बाकी संप्रदायों की अवहेलना करना। सांप्रदायिकता के अंतर्गत वे सभी भावनाएं व क्रियाकलाप आ जाते हैं जिनमें किसी धर्म एवं भाषा के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर बल दिया जाए, उन हितों को राष्ट्रीय हितों से भी अधिक प्राथमिकता दी जाए तथा उस समूह में पृथकता की भावना उत्पन्न की जाए या उसको प्रोत्साहित किया जाए। विंसेंट स्मिथ के अनुसार, विंसेंट स्मिथ ने सांप्रदायिकता की क्या परिभाषा दी है, एक सांप्रदायिक व्यक्ति या समूह वह है जो कि प्रत्येक धार्मिक एवं भाषाई समूह को एक ऐसी अलग सामाजिक तथा राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूह से अलग होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों या व्यक्ति समूह की विचारधारा को संप्रदाय या सांप्रदायिकता कहा जाएगा, यानी बाकी सभी संप्रदायों को छोड़ के अपने संप्रदाय को ही बढ़ावा देना, अपने संप्रदाय की यह धार्मिक और भाषाई एकता को फैलाना ही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य, सांप्रदायिक संगठनों के क्या उद्देश्य हैं, सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य है शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना होता है। तो सांप्रदायिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक से अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना होता है। ऐसे समूह राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों के ऊपर अपने समूह के हितों को अधिक प्राथमिकता देते हैं, जिससे समाज में फूट पैदा होती है। तो सांप्रदायिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य है अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना। सांप्रदायिकता का उदय। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासनकाल की समकालीन है। सांप्रदायिकता का उदय ब्रिटिश शासनकाल के समय ही हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई ताकि हिंदू मुसलमान लड़ते रहे तथा वे अपना शासन आराम से चलाते रहे। तो सांप्रदायिकता का उदय अंग्रेजों के समय हो गया था। अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने शासन आराम से करने के लिए हिंदू और मुसलमानों के मध्य फूट डालो और राज करो की नीति के तहत शासन किया और हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाते रहे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के निर्माण एवं विकास में जितना हाथ अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल का हाथरा उतना ही हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच राजनीतिक संघर्षों का भी। विभिन्न वर्गों की सत्ता की महत्वाकांक्षा के कारण भारतीय राजनीति में कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ब्रिटिश सरकार मदारी की भूमिका अदा करने लगी। मेहता और पटवर्धन के अनुसार अंग्रेजी शासकों ने अपने आप को हिंदू मुसलमानों के मध्य में खड़ा करके ऐसे सांप्रदायिक त्रिभुज की रचना का निश्चय किया जिसके आधार बिंदु वे स्वयं रहे। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण भारत में सांप्रदायिकता बढ़ती रही। कभी उन्होंने हिंदुओं को राजी करने के लिए मुसलमानों की उपेक्षा की, तो फिर हिंदुओं के विकास एवं आधुनिकीकरण के कारण मुसलमानों को विशेष रियायतें देकर राजी करने का प्रयास किया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन किस आधार पर किया गया, सांप्रदायिक आधार पर किया, किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने कब, 1905 में। भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कर ब्रिटिश सरकार ने इस समस्या को और अधिक बढ़ाया। 1940 में जीना ने द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीना ने द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया, 1940 में। और अंत में 1947 में सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ, सांप्रदायिकता के आधार पर। सांप्रदायिक समस्या के कारण, सांप्रदायिक समस्या के कारण स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों ने इस समस्या को बनाए रखा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी सांप्रदायिक समस्या भारतीय राजनीति की एक समस्या बनी हुई है। इनके निम्न कारण। सांप्रदायिकता का पहला कारण, विभाजन की कटु स्मृतियां। मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही ने सांप्रदायिक वैमनस्य को चरम पर पहुंचा दिया था। स्वतंत्रता के साथ ही देश का विभाजन हुआ। देश के विभिन्न भागों में हिंसा भड़क उठी, लाखों लोग विस्थापित हुए, और विभाजन में जो क्षेत्र पाकिस्तान में आए वहां से लाखों लोगों को अपना घर बार संपत्ति सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। तो सांप्रदायिक समस्या का पहला कारण, विभाजन की कटु स्मृतियां। दूसरा कारण, राजनीतिक दलों द्वारा निहित स्वार्थों के लिए पृथक्करण की भावना पनपाना। राजनीतिक दलों का स्वार्थ भी सांप्रदायिकता की समस्या को बढ़ाता रहा। तो राजनीतिक दलों का निहित स्वार्थों के लिए पृथक्करण की भावना पनपाना, राजनीतिक दलों का स्वार्थ। स्वतंत्रता प्राप्ति व विभाजन के पूर्व व बाद भारत में कई राजनीतिक दलों व संगठनों का गठन धार्मिक आधार पर हुआ। इनमें जमायत ए इस्लाम, ऑल इंडिया मजलिस ए इतिहादल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग व विद्यार्थी संगठन प्रमुख हैं। तीसरा, सांप्रदायिक समस्या का कारण, पहला हमने पढ़ा विभाजन की कटु स्मृतियां, दूसरा पढ़ा राजनीतिक दलों का निहित स्वार्थ, तीसरा कारण मुसलमानों का आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन। ब्रिटिश शासनकाल से ही मुसलमान शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रहे। नौकरी व्यापार एवं उद्योग धंधों में उनकी स्थिति सुधर नहीं पाई। मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया, इससे उनमें असंतोष बढ़ा, जिसका फायदा राजनीतिक महत्वाकांक्षा से युक्त लोगों ने उठाया। उन्होंने मुस्लिम समाज में विकास करने की बजाय असंतोष को और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया। तो तीसरा कारण हुआ मुसलमानों का आर्थिक एवं शैक्षणिक यानी शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ापन, जिसके कारण भी सांप्रदायिक समस्या बढ़ती रही। सांप्रदायिक समस्या का फोर्थ कारण है, चौथा कारण, पाकिस्तानी प्रचार और षड्यंत्र। पाकिस्तानी मीडिया भी हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ा चढ़ाकर मुसलमानों के विरुद्ध योजनाबद्ध षड्यंत्र की तरह प्रचार करती रही। पाकिस्तानी मीडिया भी हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ा चढ़ाकर मुसलमानों के विरुद्ध योजनाबद्ध षड्यंत्र की तरह प्रचार करती है। अशिक्षित ही नहीं, शिक्षित मुसलमान भी उनको बहकावे में आकर पाकिस्तान को अपना हितैषी मान बैठता है। इस प्रकार मार्च 1993 की बुम्बई विस्फोट की घटनाएं पाकिस्तानी षड्यंत्र का परिणाम थी, जिसका उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों में खूनी संघर्ष पैदा करना था। तो पाकिस्तानी प्रचार और षड्यंत्र चौथा कारण। पांचवा कारण, सरकार की उदासीनता। सरकार एवं प्रशासन की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण भी कई बार सांप्रदायिक दंगे विशाल रूप से बढ़ जाते हैं। छोटी सी घटना बड़ा रूप ले लेती है। सांप्रदायिक समस्या का शिक्षा कारण। छठा कारण, दलीय राजनीति, गुटीय राजनीति और चुनावी राजनीति। दलीय राजनीति, गुटीय राजनीति और चुनावी राजनीति। सांप्रदायिकता की समस्या के लिए राजनीतिक दलों की संकुचित दलीय हितों की राजनीति भी जिम्मेदार है। कई राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पत्रकार निखिल चक्रवर्ती कहते हैं कि सभी दंगों का मूल कारण राजनीतिक होता है और ये दंगे अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिकों द्वारा करवाए जाते हैं। तो सांप्रदायिक समस्या का छठा कारण हमने पढ़ा, दलीय राजनीति, गुटीय राजनीति और चुनावी राजनीति। सातवां कारण, तुष्टिकरण की राजनीति। तुष्टिकरण की राजनीति, सरकारों द्वारा वर्ग विशेष के वोटों के लिए उनकी उचित अनुचित मांगों को मान लेना। सरकार द्वारा अपने वर्ग विशेष के वोटों के लिए उनकी उचित अनुचित मांगों को मान लेना, उन्हें विशेष रियायतें व विशेषाधिकार देने के कारण अन्य संप्रदाय में ईर्ष्या की भावना पैदा होना स्वाभाविक है। इस प्रकार तुष्टिकरण की राजनीति भी सांप्रदायिकता की समस्या को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आठवां कारण, सांप्रदायिक समस्या का, वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति, कुछ राजनीतिक दल किसी वर्ग विशेष को अपना वोट बैंक बनाने हेतु उसको सभी सही गलत कदमों का समर्थन करते हैं। तो आठवां कारण, वोट बैंक की राजनीति भी सांप्रदायिक समस्या को बढ़ाने का कारण रही है। नवा कारण, विदेशी धन। सांप्रदायिक समस्या का नवा कारण है विदेशी धन। तेल की तरह आय से संपन्न खाड़ी देशों से मुस्लिम संगठनों को तथा यूरोपीय देशों से ईसाई संगठनों को भारी मात्रा में धन प्राप्त होता है तथा यह धन उनके शैक्षिक आर्थिक विकास में खर्च न होकर सांप्रदायिकता फैलाने धर्म परिवर्तन पर खर्च किया जाता है। तमिलनाडु के हरिजन वर्ग को इस प्रकार धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना ऐसा ही एक कदम है। ये परिस्थितियां सांप्रदायिक तनाव पैदा करती हैं। इस प्रकार सांप्रदायिक समस्या के नौ कारणों के बारे में हमने अध्ययन किया है, जो एक बार मुख्य बिंदु वापस सुन ले। पहला, सांप्रदायिक समस्या का कारण विभाजन की कटु स्मृतियां। दूसरा कारण, राजनीतिक दलों का स्वार्थ या राजनीतिक दलों द्वारा निहित स्वार्थों की भावना। तीसरा कारण मुसलमानों का आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन। चौथा कारण पाकिस्तानी प्रचार और षड्यंत्र। पांचवा कारण सरकार की उदासीनता। छठा कारण दलीय राजनीति और चुनावी राजनीति। और सातवां कारण तुष्टीकरण की राजनीति। आठवां कारण वोट बैंक की राजनीति। और सांप्रदायिक समस्या का नवा कारण विदेशी धन। इस प्रकार आज हमने सांप्रदायिकता का अर्थ और इनके कारणों के बारे में चर्चा की है। कल हम आगे अगली क्लास में सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम और सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझावों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित गृह कार्य के लिए प्रश्न लिखें। प्रश्न, सांप्रदायिक समस्या के चार कारणों का उल्लेख कीजिए। सांप्रदायिक समस्या के चार कारणों का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न लिखें, पहला प्रश्न सांप्रदायिक समस्या के चार कारणों का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न लिखें, सांप्रदायिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सांप्रदायिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तीसरा प्रश्न लिखें, सांप्रदायिकता किसे कहा जाता है। सांप्रदायिकता किसे कहा जाता है। तो तीनों प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरीके से क्लास को सुनकर लिखें और याद करें। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।